معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زياد بن السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے، سوال کر ہی آ جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ کسی کی چیز پوچھے بغیر یوز کر سکتے ہیں؟ بالفرض بندہ دکان پہ جاتا ہے، پوچھے بغیر یعنی چیز اٹھا لیتا ہے اور کھانے لگ جاتا ہے، اس کی پیمنٹ یعنی رقم جو ہے بعد میں ادا کرتا ہے، تو اس طرح جائز ہے یا نہیں؟
اب دکان پر کیسی چیز کھائی یہ دیکھا جائے گا. بعض اوقات اس چیز ہلکی پھلکی چیز اگر دانہ دو دانہ گاہک لے لیتا ہے تو دکاندار کو فیلنگ نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ سنت ہے. دوسرا ہے کہ وہ مٹھائی کی دکان پہ رس گلا اٹھائے ہڑپ کر دے، کہ برفی کا پیس لیا تو وہ بھی کھا گئے، تو اب تو دکاندار ہاتھ تو پکڑے گا نا آپ کا. اب یہ کہ اس طرح کرنا تو شرن بھی درست نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز جو کھانا چاہتا ہے اس کو خرید لے. یہ مٹھائی وہ چیز نہیں جس کا ٹیسٹ کروانا پڑے. پھل میں تو ٹیسٹ کرواتے ہیں، پیس کھلاتے ہیں مٹھا ہے. اب یہ بھی اس میں بھی چالاکی ہوتی ہے پیس کھلانے میں. یہ یا تو چھری پر مٹھاس لگی ہوئی ہوگی، سکرین بہت مٹھا ہوتا ہے، چھری سے کٹ لگے گا مٹھاس آ جائے گی، یا پھر وہ اس کو پتا ہوتا ہے بیچنے والے کو کہ پھل کا کون سا حصہ جو ہے نا وہ مٹھا ہوگا. آپ جیسے پپیتا لیں گے نا کبھی تو چکھیں گے آپ تو پپیتا ہمیشہ وہ آپ کو نوک کی طرف سے کھلائے گا. نوک جہاں ہوتی ہے جہاں سے شاخ سے توڑا اسی سے نہیں کھلائے گا، نوک سے کھلائے گا، وہ میٹھا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اوپر والے سے. تو یہ چالاکیاں اس میں بھی چل رہی ہوتی ہیں تربوز میں. اور یہ تو اب تو انجیکشن لگاتے ہیں مٹھاس کے اور رنگ کے انجیکشن لگاتے ہیں. جب کیا ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی ہے، پھل والوں کے پاس بھی. پھل رنگتے ہیں باقاعدہ کلر، ایسے سے لال لال سیب، ایسے سے خوبصورت پھل. یہ اس میں بھی چالاکیاں ہوتی ہیں، رنگ کیا جاتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہر پھل کو رنگ ہی کیا جاتا ہو، لیکن کیا جاتا ہے. تربوز کا چھلکا دیکھو، پتا ہے جن کو سمجھ پڑتی ہے ان کو پتا ہے کہ جتنا سبز زیادہ ہوگا گہرا یہ تربوز کا چھلکا اتنا میٹھا ہوتا ہے تربوز. اب یہ کہ یہ ہرا کر دیں گے آپ کو کلر سے، ٹیکنیک ہوتی ہے ان کی. بعد میٹھا ہے، گھر جا کر سر پکڑ لے گا یہ کیا ہو گیا. سنا تو یہ تھا کہ جو سبز ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، واقعی جو قدرتی طور پہ سبز ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، لیکن آرٹیفیشل طور پہ سبز کے دھوکے ہیں. اس طرح رنگ کر کے دھوکا دینا، اس کے مٹھاس اندر ڈال دینا، سیکرین کے انجیکشن لگا دینا، باقاعدہ کلر کرتے ہیں. ٹکڑے بیچنے والوں کو بھی دیکھا ہے جو تربوز کے ٹکڑے کر کے بیچتے ہیں، تو بھی کلر ڈال کے وہ ہے بہت بددیانتی. اور دھوکا تو ہماری بدقسمتی سے ہمارے یہاں نس نس میں اتر گیا ہے. گناہ ثواب میں لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں، حرام کھانے میں بالکل ڈکار نہیں لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پھنس جائیں گے. بلکہ بعض اوقات زندگی میں بھی ایسی آفتیں آتی ہیں، کبھی ڈاکو لے جائے گا، کبھی چور لے جائے گا، ٹانگ بھی توڑتا جائے گا، سر بھی پھوڑتا جائے گا، کبھی ڈاکٹر के साथ वो ऐसी तरकीब होती है कि फिर बेचारा वो दवाओं से फारिग नहीं होता मरीज। ये जरूरी नहीं कि जो इस तरह का मरीज है या तकलीफ में जिसको डाकू ने लूटा उसने हराम खाया है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि बाद हो सकता है ये सजा के तौर पर भी हो, दर्जात की बुलंदी के लिए भी हो सकता है। ताहम ये कि धोखा करने वाला अगर दुनिया में इसको तकलीफ नहीं भी आई तो आखिरत की तकलीफ है तो बाकी है। और अल्लाह के प्यारे नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमा गए, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, इससे मिलावट की हम में से नहीं, वो बचना है, बहुत बचना है, हलाल खाना है, थोड़ा खाना है, हलाल खाना है, उसमें इंशाअल्लाह बरकत होगी, हराम में बरकत नहीं बल्कि नुहूसत और आफत शामत। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। लेकिन हुजूर यहाँ एक बात ज़हन में यूं बिठा दी जाती है, जैसे ना शराफत का ज़माना नहीं है, अब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं हमारे साथ धोखा होता है, और कोई हम भी जहन बना लेते हैं कि यार मार्केट में रहना है, माशरे में रहना है, तो इसी तरह रहना है, जब मेरे साथ करप्शन होती है, मेरा कोई काम बगैर रिश्वत दिए नहीं होता है, तो फिर मैं कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकूंगा यहाँ पर?
अब किसी ने आपको नाहक मारा तो निकल गया, तो आप किसी और को पकड़ के मारे, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया तो इसका मतलब आप दूसरे को धोखा दे दें, इसी पर कयास कर लें, जब आप इसके मार खाई दूसरे को मारेंगे नहीं आप, तो इस तरह आपने धोखा खाया तो दूसरे को धोखा क्यों देंगे? उस धोखा जो आपने खाया उस जुल्मन उसने धोखा दिया है आप पर नाहक, है ना, जो कुछ हुआ है तो इस पर सब्र करेंगे तो अजर मिलेगा। अब आप अगर धोखा देंगे दूसरे को तो सारे गुनाहगार होंगे, तो नजासत से पाक नहीं होती, पानी से पाक होती है। तो गुनाह जो है वो गुनाह से धुलता नहीं है, बल्कि गुनाह तौबा से एक काम करने से भी जो छोटे गुनाह है वो धुल जाते हैं, सगीरा। दोबारा लेके ये हम धोखा ना दे, हमने रिश्वत दी क्यों? इससे ज्यादा कमाने तो रिश्वत देनी पड़ती है, तो थोड़े कमाने पर इक्तफा करते हैं, उनको कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती। जैसे मस्जिद का इमाम है, ये रोता ये भी है कि इतने हजार है उतने हजार है, अल्लाह का शुक्र अदा कर यार, मतलब ना झूठ बोलना पड़ता है, ना धोखा देना पड़ता है, ना मिलावट करनी पड़ती है, ना रिश्वत देनी पड़ती है, ना टैक्स देना पड़ता है। अब कोई भी पूछता नहीं आपको, पर टैक्सेशन ऑफिसर अगर रिश्वत खोर भी है तो कभी जुम्मा ईद के लिए आएगा तो आपके भी हाथ बांध कर खड़ा होना है, आपसे कुछ नहीं कहना, दुनिया को लुटेगा आपसे नहीं लुटेगा ये। तो यार तो ये थोड़ी तनख्वाह वाला इमाम आखिर ये रिश्वत खोरों या सूद का कारोबार करने वालों की क्यों रिस्क करता है कि ये इतना लाख कमाता है, उसकी इतनी बड़ी तनख्वाह है, उसकी इतनी बड़ी तनख्वाह है? नहीं नहीं, आप फायदे में, आपके सीने में कुरान है, पूरा नहीं है तो कुछ तो सूरतें आयते हैं, और वो जो मतलब जिसकी 2-4 लाख रुपए तनख्वाह है उसको सूरह फातिहा भी पढ़ना नहीं आती, तो आप ये चाहते हैं कि आपके सीने से कुरान निकाल दिया जाए और दाढ़ी ले लीजिए आपसे वापस, इमामा छीन लिया जाए और अफसर साहब माइनस साहब की गद्दी पर आपको बिठा दिया जाए और आप 4 लाख रुपए कमाए 15,000 के बदले और कुरान आपके सीने में ना रहे, मरने के बाद क्या काम आएगा? ये 4 लाख की तनख्वाह काम आएगी या कुरान करीम काम आएगा? मरना तो है यार, पेट तो भर जाता है, देखो कीड़ी का भी भर जाता है, हाथी का भी भर जाता है, आपका भी तो पेट तो भर ही रहा है ना। अब बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस ने किसका साथ दिया है? कारून का खजाना, क्या कारून को काम आया? उसके साथ ही तो जमीन में धसा खजाना, कितना? 40 आदमियों की जमात, उसके खजाने को नहीं, उसके खजाने की चाबियों को उठा दी थी, खाली चाबियां इतनी थी उसके खजाने की कि 40 आदमी उठाते थे उसको, तो खजाना कितना होगा? लेकिन वो दफन जमीन में धसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां करके, तोहीन करके वो जमीन में धसा, और उसका खजाना, कोई ये ना कहे कि खजाने के लिए मतलब कारून को रस्ते से हटा दिया गया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम खजाना चाहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कमी थी? वो खजाना भी उसके सर पे आया, जमीन में धसा, और अब यहाँ तक कॉल है कि क़यामत तक ये खजाना के सर पे होगा और ये दस्ता चला जाएगा जमीन में। खजाना नथिंग, बस अल्लाह पाक इतना दे कि हमारा पेट भर जाए, बच्चों के हकूक अदा हो जाए, हमें मतलब हम किसी का कर्जदार ना हो, मोहताज ना हो, रब के मोहताज रहे। बाकी खजाने को क्या कर रहे हैं तो आप समझते हो, इसको बोलना आता है, मेरे को बोलना आता है, तो मरने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसा बोलता था, या सही तो बोलता था कि जितना भी आप जमा करेंगे हम, चाहे वो हलाल हलाल होगा तो भी हिसाब है ना, हराम होगा तो सजा है। तो हलाल खजाना होना, आप हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह उन्हों की रीस करें कि भाई ये भाई वो तो मतलब उनके उनके खजाने का कोई जर्रा हमको मिल जाए ना, तो हमारी सारी गुनाहों की बीमारियां दूर हो जाए। ऐसा हलाल खजाना, ऐसा पाकीज़ा खजाना आज के दौर में कौन लाएगा हम उनकी बातें करें। तो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें नेकियों का इतना खजाना दे, इतना खजाना दे, एक बस कयामत के दिन आका हमसे खुश हो जाए और सीने से लगा दे कि ये मेरा गुलाम है, ये मेरा गुलाम है जिसने मेरी कोई सुन्नत नहीं छोड़ी। काश
यहाँ हमें ये बात भी क्या समझ लेनी चाहिए कि बस औकात ऐसा होता है कि आदमी नेकी कर रहा होता है, जमा से नमाजें उसको मिल रही होती हैं, दरस व बयान और दीगर नेकी के काम में, हुकूक के अदायगी के काम में मसरूफ़ होता है कि अचानक उसके पास एक माल दौलत कारोबार पैसा उसकी फरावानी इसके पास शुरू हो जाती है और फिर वो उस तरफ बढ़ता है बढ़ता बढ़ता और लोग देख रहे होते हैं कि आहिस्ता 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 इसके पास दुनिया की दौलत माल और असबाब और दीगर चीज़ें इसके पास आना शुरू हो गई हैं। तो अब देखने वाला देखता है कि यार हम देख रहे हैं यार थोड़े अरसे से इसको बड़ा इस पर करम हो गया, इस पर बड़ी मेहरबानियाँ हो गई हैं यार, इसके दिन फिर गए और क्या यार इस पर दिन अच्छे आ गए, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा होता कि उसके पास दौलत और असबाब तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो ये नेकी के काम में मसरूफ होता है, हत्ता कि इसकी जमातें भी जाना शुरू हो गई हैं, तो इसको कैसे देखेंगे हम कि इसके ऊपर ये बेहतरी आ रही है या जवाल आ रहा है।
हर जी शुरूर जिसमें थोड़ी सी भी अकल है वो समझ सकता है इसमें बेहतरी आ रही है या बदतरी आ रही है। इन्हें दुनिया जहान की सारी दौलत कारून का खजाना भी ले लिया जाए जमीन से मुमकिन हो तो, ये सारा खजाना जब से ये दुनिया का खजाना शुरू हुआ और जब तक मजीद इसका प्रोडक्शन होता रहे, सारा खजाना एक तरफ, एक नेकी एक तरफ, वो नेकी इस खजाने से नहीं खरीदी जा सकती जो रब की तौफीक से मिलती है। ये सारा खजाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, नेकी जन्नत पे ले जाइए। अब आप फैसला कर रहे कि जिस दौलत की वजह से, जिस दौलत दौलत मसरूफियत भी दिला रही है ना, मसरूफियत लाएगी, टेंशन लाएगी, तो इसकी वजह से नमाजों में कोताही, जमातों में कोताही, सुन्नत पर अमल करने में कोताही। क्या एक बार कुछ लोग जमा थे पैसे वाले लोग, तो मैंने दाढ़ी के ताल्लुक से, रखने के ताल्लुक से इसकी तरगीब व इसरार दी। बड़े सेठ लोग जमा थे और मुझे भी तजर्बा हुआ कि ये सेठ लोगों के नसीब में नहीं होती इस तरह की चीजें, ये जनरल बात कर रहा हूँ, सबके बात नहीं कर रहा। तो एक ने मुझे अलग से कहा, यार आप इतना इसरार करते हैं, हम लोग नहीं रख सकते, धंधे से रिश्वतें देनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, यही अक्ल ठिकाने पर आई, इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ना पड़ेगा, ये दौलत नहीं छोड़ सकते, एक सुन्नत पे हाथ रखे या दौलत पर हाथ रखे। तो ये कि ज्यादा दौलत के लिए वो रिश्वत इस दौर में पहले नहीं थी, उस्मान गनी का खजाना था, रिश्वत से फाक था, झूठ से फाक था, धोखे से फाक था, सुभान अल्लाह, ये वो खजाना था कि वो जिसके बारे में समझे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है कि मनकूल है कि हलाल का पहला लुकमा पेट में जाते ही पहले के गुना माफ हो जाते हैं। वो हलाल का लुकमा उनका बरकत वाला, उस्मान गनी का तस्करा नहीं है रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुबालगा कर रहा हूँ, आजकल ऐसे खजाने कहाँ है, लेकिन हर एक का हराम का खजाना है, ये नहीं कह रहा कि हराम का माल है सबका, सारे मालदार हराम कमा रहे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हर एक अपने माल की स्कैनिंग कर ले, अपने कारोबार की स्कैनिंग कर ले, फिर मुझे सलाम करेगा कि बात तो सही कहता था यार, हम तो बच ही नहीं पा रहे। देखिए कारोबार में बाद ऐसी सूरतें होती है जो इनको पता नहीं होती, और वो सूद की होती है, इनको नहीं पता होता, ये समझते हैं कि सही है, अलग सूद होता है। तो ये कौन समझाएगा? ये हमारे उलमा हमको समझाएंगे। इसे तो हम तो पहले भी मशवरे दिए, एक बार फिर दे देता हूँ, जो भी कारोबारी लोग हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिले चलाते हैं, इनको चाहिए एक बार दावत अहले सुन्नत या कोई भी किसी आशिक रसूल मुफ्ती से अपने कारोबार की स्कैनिंग करवा लें। अब इतने इतने मतलब है कि मुआहदे ये तैयार करते हैं, इसमें ये शर्त वो शर्त, ये अपने तौर पर कर लेते हैं, ये शर्तें वो शर्तें ये कानून है, हालांकि बाद इनमें शर्तें नाजायज होती हैं, इनको नहीं पता होता, ये अपने तौर पर ही कर लेते हैं। इन शराइत की भी स्कैनिंग करवानी पड़ेगी, तफ्तीश इसकी करवा लें उलमा से, मुफ्तियाने किराम। तो हर मस्जिद का इमाम आलिम या मुफ्ती नहीं होता, हर स्टेज का मुकर्रर, ये आपके लिए शायद इस मामले में हो सकता है कि इतना मुआविन ना हो। मुआविन वो होगा जो दारुल इफ्ता में फतवे लिखता होगा, फतवे देता होगा, और इनसे भी बढ़कर लिखने वालों से भी जो पावरफुल होते हैं ना, मुसद्दिक के बाद औकात ये बड़े मुफ्ती जो होते हैं ना, ये खुद नहीं लिखते, इतनी मसरूफियत होती है, लिखवाते बातें अपने शागिर्दों से, तो जो तस्दीक करती है सबसे पावरफुल होते हैं ये, वो मतलब ये देखें, या फिर वो अपने शागिर्दों से भी तफ्तीश करवा देंगे, वो तस्दीक कर देंगे, जो भी तरकीब सिस्टम बने हुए हैं। तो इस तरह आपके माल की, आपके कारोबार की ये स्कैनिंग हुआ। आप मस्जिद के इमाम साहब तो वैसे ही आप बोलेंगे तो आपका रोब इतना है कि वो पता नहीं, वो समझ नहीं पड़ेगी, तो शायद हाँ बोल देंगे ना बोल देंगे, ना बोलने की जरूरत सेठ साहब को फोन करेगा यार, बहुत मुश्किल होता है, रोब इतना होता है सेठ साहब का कि मतलब आदमी वैसे ही खुशी और खुशू आ जाता है गुफ्तगु में। आजी साहब जी 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 आजी साहब जी सेठ साहब जी माशाल्लाह जी, और अफसर होगा तो उससे भी आदमी खुशू में आ जाता है, जी सर जी सर, चाहे चाहे वो सरापा शर हो लेकिन सर सर उसको कर रहे होते हैं। हमारा अंदाजे गुफ्तगु ये होता है, बिल्कुल याद रखा, मगलूब हो जाते हैं। दौलत पर जिसकी नजर नहीं होती ना, वो मगलूब नहीं होगा, वो मतलब वो दो टोक बात कर सकता है आमतौर पर, या वैसे ही आदमी नफ्सियाती तौर पर भी मगलूब हो जाता है, भले दौलत पर नजर ना हो, ये भी होता है, इनके रोब ऐसे होते हैं बाजू का। अल्लाह करम फरमाए और हमें उलमा से मरगूब करे, उलमा के सामने मगलूब करे, इसमें आखिरत का इंशाल्लाह रोब और गलबा है इंशाल्लाह, इन मानों में मतलब दबदबा मिलेगा। उलमा से हम झुक कर रहेंगे, नरम रहेंगे, इनके सामने खुशू खुशू करेंगे, आजी करेंगे, इनके भूले नहीं निकालेंगे, इन पर तनकीदें नहीं करेंगे। ये उलमा हक की बात कर रहा हूँ, उलमाए दीन, उलमाए हक, उलमाए दीन वही होते हैं कि जो जिनका अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता है ना, जैसे हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये उलमाए हक से मुराद उलमाए अहले सुन्नत है, मैं जो कह रहा हूँ। वरना शैतान भी आलिम है, बहुत बड़ा अल्लामा है, हाँ इसके पास बहुत इल्म है, लेकिन क्या नाम है अलकाफिरीन, जो कुरान का फतवा है उस पर, वो काफिर उसे हो गया। एक हिकायत में बयान करता हूँ दौलत के ताल्लुक से, मनकूल है यानी बयान किया गया है, कहा गया है, एक नेक शख्स को कहीं से सोने की ईंट यानी गोल्ड ब्रिक्स हाथ लग गई, रात में आ गई, मिल गई, वो दौलत की मोहब्बत में मस्त होकर रात भर तरह तरह के मंसूबे बांधता रहा, अब तो मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा, बेहतरीन लिबास सिलवाऊंगा, बहुत सारे खुद्दाम अपनाऊंगा, नौकर चाकर मासियां मासे रख लूंगा। अलगरस मालदार बन जाने के सबब वो राहतों और आसाइशों के तस्वुरात में गुम होकर उस रात अपने रब्बे अकबर से यकसर गाफिल हो गया, अल्लाह की इबादत से बिल्कुल वो गाफिल हो गया। सुबह इसी धन की धुन, दौलत की धुन में मगन मकान से निकला, इत्तेफाकन कब्रिस्तान के करीब से उसका गुजर हुआ, क्या देखता है कि एक शख्स ईंटें बनाने के लिए कब्र पर मिट्टी गूंद रहा है, ये मंदिर देखकर एकदम उसकी आंखों से गफलत का पर्दा हट गया और इस तस्वीर से उसकी आंखों से आंसू जारी हुए कि शायद मरने के बाद मेरी कब्र की मिट्टी से भी लोग ईंटें बनाएंगे। आह मेरे आलीशान मकानात और उम्दा मलबूसात वगैरह धरे के धरे रह जाएंगे, लिहाजा सोने की ईंट से दिल लगाना तो जिंदगी को सरासर गफलत में गंवाना है। हाँ अगर दिल लगाना ही है तो मुझे अपने प्यारे प्यारे अल्लाह से लगाना चाहिए। चुनाचे उसने सोने की ईंट यानी गोल्ड ब्रिक्स तर्क की, उसको छोड़ दिया और जोहद व कनाअत इख्तियार की। दुनिया से बेरग़बत थी और अल्लाह ने जितना दिया उस पर राजी रहने का ज़हन बना लिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे दुनिया की मोहब्बत का शरबत पिलाया गया वो तीन चीज़ों का मज़ा ज़रूर चखेगा। नंबर एक, ऐसी सख्ती जिससे उसकी थकन दूर ना होगी। नंबर दो, ऐसी हिर्स जिससे वो गनी ना होगा। नंबर तीन, ऐसी ख्वाहिश जिसकी तकमील ना कर सकेगा, यानी ख्वाहिश ऐसी ख्वाहिश जिसे वो पूरा ना कर सकेगा। लिहाजा जिसने दुनिया को तलब किया आखिरत उसके मरने तक उसे तलाश करती रहेगी, जब वो मर जाएगा तो वो उसे पकड़ लेगी और जिसने आखिरत तलब की दुनिया उसे ढूंढती रहेगी यहां तक कि वो उसमें से अपना पूरा रिस्क हासिल कर ले। रिवायत है हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या कोई ऐसा है जो पानी पर चले और उसके पांव ना भीगे। लोगों ने किया ये नहीं हो सकता, लोगों ने किया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया यूं ही दुनियादार गुनाहों से महफूज नहीं रहता। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की शरहा में मिरातुल मनाजी में लिखते, यहां दुनियादार से मुराद दिल में दुनिया की मोहब्बत रखने वाला है। मोहब्बत दुनिया तमाम गुनाहों की जड़ है। या दुनिया से मुराद वो दुनिया है जो इंसान को अल्लाह ताला से गाफिल कर दे। तो ऐसी दुनिया बुरी है कि जो अल्लाह पाक से गाफिल कर दे, और वो दुनिया बुरी जिसकी मोहब्बत दिल में बस जाए, घर कर जाए। तो ये दुनिया की मोहब्बत, मोहब्बत जो है दुनिया की, ये गुनाहों की जड़ है। ठीक है ना। तो अब जैसे माँ बाप भी दुनिया, बाल बच्चे भी दुनिया, दुनिया में ही है ना सब। तो इनकी शरीयत के दायरे में लेकर खिदमत करना, हसब ज़रूरत हलाल रोज़ी के लिए जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, ये दुनिया मज़मूम नहीं है। दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। इसको हम यूँ समझे कि किश्ती पानी में चल रही है, ढेरों ढेर पानी, समुन्दर दरिया कितना बड़ा है, बहुत सारा पानी है, किश्ती चल रही है, नो प्रॉब्लम, भले ढेर सारा है, लेकिन यही पानी अगर किश्ती में आएगा तो इसको क्या बोलेगा, किश्ती में चढ़ जाए पानी, दया दबा हो जाएगा। तो इसी तरह अगर किसी के पास ढेर सारी दौलत है, ये हलाल किया तो है ढेर सारी दौलत, तो ये उसके लिए इस सूरत में नुकसानदेह नहीं है कि ये इसके दिल में नहीं उतरती। और अब ये कि दिल में उतरेगी तो ये बर्बादी। अब इस दौर में है बड़ा मुश्किल, कोई दावा करे कि मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, इसको बोलो ना कि यार ये बंगला खरीद कर दे दो, मस्जिद बना दिए। अब जो जवाब दे वो समझो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बगाफियत नसीब फरमाए। तो दुनिया की मोहब्बत से बचना बड़ा मुश्किल है। आ गई तो अब हम लोग निकल नहीं सकते। वो उस्मान गनी की शान थी जिसके खजाने की, और लोग ये मालदार लोग मिसालें देते हैं, इन्होंने जो राय खुदा में लुटाया कितना कितना लुटाते थे। खजाना उस्मान गनी का मशहूर, और सहाबा में सबसे ज्यादा मशहूर जो مالدار تھے صحابی وہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. ان کا مال بھی صاف ستھرا. دس جنتی جو نا خصوصی و اشرہ مبشرہ ان میں سے ایک ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب چونکہ ان کے پاس مال بہت تو حلال پر حساب تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. حالانکہ ان کا مال سب حلال ہے اور حلال پر حساب ہوتا ہے تو ان کو حساب کے لیے روکا جائے گا قیامت میں. صحابی ہے تو سب صحابہ میں یہ سب سے زیادہ مالدار تھے تو یوں یہ سب صحابہ میں جنت میں بھی سب سے آخر میں داخل ہوں گے. صحابہ میں جنت کے آخر میں داخل ہوں گے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ایسا 100% حلال مال اور صحابی اور جنت کی بشارت دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے مل گئی. اب یہ کہ دیو رات کی گنتی میں جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ, حساب زیادہ ہمارے ساتھ. اور پل صراط سے بھی وہ گزریں گے جو ہلکے پھلکے ہوں گے. یہ بھی ہے اس طرح کے اخبار. ہلکا پھلکا ہم میں سے تو شاید کوئی نہیں. اور یوں بھی نہیں کہ اگر کمزوری ہے بھی مالی طور پر حرص کس کو نہیں ہے. غریب کے فضائل ہیں لیکن ظاہر ہے اس غریب کے فضائل کہ جو مطلب یعنی کہ حرص میں لگا رہتا ہے وہ مالداروں سے چڑھتا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے, کڑ کڑ کرتا رہتا ہے. جی ظاہر غریب تو وہ اچھا تھا کہ جس کے پاس مال کی